सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले दो एपिसोड्स के तहत मैंने एक फिलॉसफी की फाउंडेशन तैयार की है आपके दिमाग में। आप यूं कह लीजिए कि एक कैनवास सा बनाया है, जिस कैनवास पर अब मैं फिलॉसफी की इबादतें लिखने की कोशिश करूंगा। और मेरा विश्वास है कि डेफिनेटली दो दिन के ये लेक्चर्स आपको बोरिंग नहीं लगे होंगे, और यदि ऐसा हो गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले लेक्चर भी शायद बोरिंग न लगे। और लेकिन यदि ये बोरिंग भी लगे होंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेरे साथ थोड़ी यात्रा करने की कोशिश कीजिए, शायद आगे ठीक लगने लगे। तो आइए अब हम फिलॉसफी पर बात करते हैं। जब हम भारत के संदर्भ में फिलॉसफी की बात करते हैं तो आपको एक तथ्य अपने दिमाग में रखने चाहिए, खासकर वेस्टर्न फिलॉसफी के संदर्भ में बात कर रहा है, या कह लीजिए कि वेस्टर्न फिलॉसफी को पैरेलल रखकर मैं ये बात कर रहा हूं। हमारे पास प्राचीनतम फिलॉसफी के अंतर्गत वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य आप जानते हैं, चार हमारे पास वेद हैं, जिनमें पहला वेद हमारा ऋग्वेद है, और वहां से भारतीय दर्शन की शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद फिर जैसे आगे आगे वेद आते हैं, हमारी जो फिलॉसफी है वो गहरी होती चली जाती है, विस्तृत होती चली जाती है। एक बात जो मैंने महसूस की है, दूसरों ने भी महसूस की होगी, वो ये है कि हमारे जो विचारक थे, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, याद रखिए कि हमारे जो प्राचीनतम ऋषि मुनि रहे हैं वो फिलॉसफर ही हैं, वो वैज्ञानिक ही हैं। जैसे चरक को ले लीजिए, सुश्रुत को ले लीजिए, हम इन्हें आचार्य कहते हैं, हम ऋषि मुनि कहते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं ना, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ऋषि मुनि। तो जब भी ऋषि मुनि की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो विचारक हो सकते हैं, वो वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिन्होंने समाज को बदलने में अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि रहे, उन्होंने जो सोचने की शुरुआत की, और ये जो भारतीय दर्शन है उसकी अपनी एक बहुत बड़ी विशिष्टता है कि उन्होंने जो शुरुआत की वो प्रकृति के संदर्भ में की, या इसे आप यूं कह सकते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जो रिश्ता होना चाहिए या जो रिश्ता था उस पर विचार करना शुरू किया। पहले तो उन्होंने इसी तरह के प्रश्न करने शुरू किए कि संसार कैसे बना, हम कहां से आए, ये सारे प्रश्न आए। अब आप देखिए कि वो अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं, यहां से विचार की शुरुआत होती है। और फिर ये जो प्रकृति है, कैसे हम इसके साथ सह अस्तित्व के रूप में रह सकते हैं, यानी कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमारे साथ है, हमें इनके साथ रहना है, और हम प्रकृति के ही चूंकि एक अंग हैं इसीलिए को एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। आपको पूरे के पूरे हमारे प्राचीनतम दर्शन में ये बात मिलेगी, और यही कारण है कि आप देखिए कि हमारी जो प्राचीन देवी देवताओं की कल्पना की गई है वो प्रकृति से, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो वर्षा हो, आप देखिए कि वो प्रकृति के तत्व हैं। यहां तक बाद में आकर के हम वनस्पतियों तक अपना विस्तार कर लेते हैं कि उन्हें भी हम अपने देवी देवताओं के रूप में पूजित मानते हैं। कुल मिलाकर के एक लाइन में बात यह है कि भारतीय दर्शन ने आरंभ में जो विचार करना शुरू किया वो मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन जब हम वेस्ट की फिलॉसफी देखते हैं, पश्चिमी विचारकों को पढ़ते हैं, तो वहां आपको एक बड़ा अंतर दिखाई देगा, और अंतर यह है कि वहां के विचारक मनुष्य और समाज के परस्पर संबंधों पर विचार करते हैं। देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय विचारक मनुष्य और प्रकृति के संदर्भों में विचार करते हैं। प्रकृति है एक विशाल प्रकृति, क्योंकि प्रकृति उनके जीवन का एक हिस्सा है, कुटुंब का एक हिस्सा है। तो इसीलिए जो भारतीय दर्शन है शुरू से ही बहुत ज्यादा व्यापक और बहुत ज्यादा गहरा हो गया है, अद्भुत है। और वो इतना गहरा है कि आधुनिकतम विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांतों के मूल बीज आपको उनमें मिल सकते हैं। देखिए, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे बड़ा विज्ञान कौन सा है जो आज आप ये कह लीजिए कि दुनिया में तहलका मचाए हुए है, वो है फिजिक्स। फिजिक्स, मैथमेटिक्स के जरिए हम फिजिक्स के नए नए रहस्यों को ढूंढ रहे हैं, या यूं कह लीजिए प्रकृति के नए नए रहस्यों को ढूंढ रहे हैं। तरंगे क्या है, प्रकाश क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हम ये जो भौतिक जो जगत है इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, वही विज्ञान है। क्योंकि भारत शुरू से इस प्रकृति को लेकर के ही चल रहा था, तो स्वाभाविक तौर पर जब प्रकृति पर वो विचार करेगा तो उसके तथ्य आते चले जाएंगे ना। तो हमारे दर्शन शास्त्र में प्रकृति के उन रहस्यों को शुरू से ही देखने की कोशिश की गई और उन रहस्यों को जाना भी गया और उसे अपने अंदाज में प्रस्तुत भी कर दिया गया। यह हमारी विलक्षण योग्यता है, विलक्षणता है हमारे दर्शन शास्त्र की। वेस्ट ऐसा नहीं कर सका, वो मनुष्य और समाज के बारे में सोचता था। जब समाज के बारे में कह रहे तो मनुष्य और राजनीति के बारे में सोचता था, राज्य कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, अच्छे राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है, उसने इन सब पर विचार किया। जबकि हमने विचार किया कि अच्छे जीवन का निर्माण कैसे हो सकता है, और जीवन का निर्माण के दौरान राज्य की बात आ गई, धर्म की बात आ गई, वो बात अलग है। लेकिन हमारे लिए जो जीवन के निर्माण का जो दायरा था वो बहुत व्यापक था, उनका दायरा उतना व्यापक नहीं था। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह एक बहुत बड़ा अंतर मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए अगर हम विचारकों की दृष्टि से ऋग्वेद काल को लें तो ऋग्वेद के पूरे पीरियड में आपको जो दर्शन शास्त्र मिलेगा वो पूरी तरह से एक प्राकृतिक रूप का दर्शन मिलेगा, यानी कि प्रकृति के रूप में वहां दर्शन के अलग अलग श्लोक, अलग अलग ऋचाएं, अलग अलग भावनाएं और अलग अलग विचार मौजूद मिलेंगे। हालांकि जब आप ऋग्वेद की उन बातों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो प्रार्थनाएं की जा रही हैं, इसमें कहां कोई दर्शन शास्त्र है, इस तरह की बातें मिलती हैं। इसीलिए जो वेस्टर्न फिलोसफर है वो कह देते हैं कि ये तो इमेच्योर माइंड की केवल प्रार्थनाएं हैं और इसमें क्या रखा हुआ है। लेकिन जो लोग समझते हैं, वेस्ट के भी विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने वैदिक साहित्य को समझा है और उसकी मुक्त कंठ से सराहना की है और उस खासकर इस वैदिक साहित्य को पूरे मानवीयता की अमूल्य धरोहर माना है, बशर्ते कि आप उसे समझ सकें। तो दोस्तों, अब देखिए कि फिलॉसफी की शुरुआत कैसे हुई, हमारे दर्शन शास्त्र की शुरुआत कैसे हुई, और इसे आप यूं भी कह सकते हैं थोड़े से रूप में कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जब मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो आप इसे आज के संदर्भ में धर्म के रूप में मत लीजिए। दरअसल उस समय जो फिलॉसफी आई है उसको हमने उस समय का धर्म कहा है जिसे धारण किया जा सके, क्योंकि हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्य और प्रकृति के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रकृति तो बहुत विराट है, बहुत शक्तिशाली है। तो आपकी जो बातें निकल करके आएंगी प्रकृति से वो धर्म हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सूर्य के प्रकाश को बहुत बड़ी जीवनी शक्ति मान रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो सूर्य के प्रकाश के कारण है, इस प्रकाश से फसलें होती हैं, इस प्रकाश से वर्षा होती है, यह प्रकाश हमें सुरक्षा देता है, यह प्रकाश हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आप सूर्य की आराधना कर रहे हैं, तो जब सूर्य की आराधना कर रहे हैं और जिस ऊर्जा की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, अपने जीवन का आधार मान रहे हैं, उसकी आप फिर उपासना करने लगते हैं। तो जब आप उपासना करने लगते हैं तो फिर वो धर्म बन जाता है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? ऊर्जा के स्रोत के रूप में हुई थी। तो इसलिए कभी कभी ये भी गड़बड़ हो जाती है कि लोग कहते हैं कि अरे वो तो धर्म की बात है, भारतीय में विचारकों के पास फिलॉसफी कहां थी? फिलॉसफी और क्या होती है, जीवन के बारे में बात की जा रही है, यही तो फिलॉसफी है। तो जो हमारा जो ऋग्वैदिक दर्शन है उसमें आपको शुरुआत में ही भारतीय विचार ने जो प्रकृति की शक्तियां हैं उनका पर्सोनिफिकेशन शुरू कर दिया, उनका मानवीकरण करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्हें मनुष्य के रूप में देखा जाने लगा। जैसे मैंने कहा कि सूर्य को आपने देवता मान लिया, आपने इंद्र को देवता मान लिया, जो वर्षा कर रहे हैं वो देवता हो गए, तो बहुत सारे इस तरह के देवता हमने बना लिए। ये बेसिकली प्रकृति के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा का प्रमाण है। ये बात अलग है कि आगे चल करके फिर क्या होता है, कैसे होता है, वो एक अलग बात। अग्नि को आप देखिए कि अग्नि को तो बहुत ही बड़ा देवता माना गया, अग्निदेव, यज्ञ के माध्यम से हम अग्नि की ही एक तरीके से आराधना करते थे, उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे। तो जब ये मानवीकरण हो गया तो धीरे 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 स्वाभाविक तौर पर फिर कर्मकांड आने लगे, यानी कि आप पूजा करने लगे, उपासना करने लगे, यज्ञ करने लगे, ये सारी चीजें हुई। और जब ये चीजें होने लगी तो अब आपको एक मेडिएटर की जरूरत पड़ी कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनका जानकार भी हो, जो ये सब करा सके, यज्ञ करा सके, पूजा करा सके। तो हमारे समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे हम कहते हैं पुरोहित, पुरोहित वर्ग, धार्मिक वर्ग। और स्वाभाविक तौर पर फिर ये जो धार्मिक वर्ग है, चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ था और धर्म ईश्वर से जुड़ा हुआ था और हम ईश्वर से जुड़े हुए थे, तो जो पुरोहित की जो प्रतिष्ठा हुई समाज में वो बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हुई। ये हमारा पूर्व वैदिक काल का रहा। मैं एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर के आपसे बातें कर रहा हूं दोस्तों, मैं आप इतिहास की तैयारी नहीं करा रहा हूं, है ना। इसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल आ गया। कुछ समय तक हम प्रोग्रेसिव पीरियड में रहे। उत्तर वैदिक काल के तहत फिर जो हमारे वैदिक काल के जो तथ्य थे पूर्व वैदिक काल के, उनमें डिक्लाइनिंग शुरुआत हुई, यानी कि उनका पतन होना शुरू हुआ। जिन कर्मकांडों की शुरुआती झलक हमें पूर्व वैदिक काल में मिलती है वो यहां बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हम प्रकृति पूजक बन गए, कर्मकांडी बन गए, ब्राह्मण जो थे पूजा कराने वाले उनकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो गई, और उत्तर वैदिक काल में ही फिर संसार की रचना करने वाले प्रजापति ब्रह्म का उदय हुआ। तो फिर ढेर सारे विचार आने लगे, पुनर्जन्म के विचार आने लगे, आत्मा अमर होती है, इस तरह की बातें होने लगी, आत्मा कभी मरती नहीं है, इस तरह की धारणाएं जन्म लेने लगी। दोस्तों, ये वैदिक काल का हमारा दार्शनिक चिंतन रहा। तो इस वैदिक काल के दार्शनिक चिंतन में आपको उसके केंद्र में धर्म मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि आरंभिक व्यवस्थाएं मिलेंगी। जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई, जिन्हें उस समय धर्म कहा गया, आपको उसकी झलक दिखाई देगी। राइट? तो मेरी समझ से यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सही मायने में हम उस दर्शन शास्त्र में प्रवेश करेंगे जहां आपको इस प्रकृति के निर्माण और चेतना और आत्मा और भौतिक शरीर, इन सब के बारे में अलग अलग तरीके से जानने और समझने को मिलेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे दोस्तों, और अब मैं इसे यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।